Yali Madad, Earth of May, Year 2004, my rising Scarborough Jamatkana in the morning. Yali Madad. پہلی دفعہ آپ کے اس نئے جماعت خانے میں آیا ہوں. بہت اچھا جماعت خانے ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حاضری کتنی اچھی ہے. سکھی محبت کری وات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت کی پروپیگنڈا کیا تو ایک چیز کے اوپر بڑا زور دیا, اللہ ایک ہے, میں اس کا محمد رسول ہوں, نماز پڑھو, زکات دو. یہ جو عرب لوگ تھے اگرچہ وہ مشرک تھے, مشرک کہتے ہیں آئیڈولیٹرز کو, مورتی پوجک کو, وہ لوگ بھلے مورتیاں پوجتے تھے لیکن خدا کو مانتے تھے. اللہ کا جو لفظ ہے وہ ان کی وکیبولری میں تھا. جھگڑا یہ تھا کہ محمد کو رسول نہیں مانتے اور اگر محمد کو رسول نہ مانا جائے تو وہ آدمی بھلے اللہ کو مانتا بھی ہوئے پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے, کافر مانا جاتا ہے. کافر کہتے ہیں ریجیکٹ کرنے والے کو, جو منع کرے نہیں میں یہ نہیں مانتا. لفظ جو کفر ہے, کفر کا مطلب ہے ریفیوز کرنا, ریجیکٹ کرنا. تو رسول اکرم نے ان لوگوں کو یہ سکھایا اللہ ایک ہے لیکن میں اس کا رسول ہوں اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا گیا. نبی کریم کے اس بات کو کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک بنا دیا, یہ جو یونیٹی تھی اس کے پہلے ہزار سال نہیں لیکن 1500 سے 2000 سال بھی عربوں نے کبھی یونیٹی دیکھی نہیں تھی, سمجھی نہیں تھی, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یونیٹی کیا ہوتی ہے. لیکن اسلام میں اللہ کی جو یونٹی ہے, یعنی اللہ ایک ہے, یہ یونٹی ہے. اور یہ جو یونٹی ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کو سسٹم کے اندر لا کے خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی معرفت جماعت کو ایک بنایا. سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ, امیر غریب, آقا نوکر, سب ایک ہے. تو جو جماعت ہے وہ ایک یونٹ بن گئی. جماعت میں اگر یونٹی نہیں تو اللہ کی یونٹی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. ایک ہونا چاہیے. آپ کبھی, خاص طور پہ آپ میں وہ لوگ کے جو مذہب کو ماننا جانتے ہیں, پڑھنا جانتے ہیں, مذہب کی سگنیفیکینس جاننا چاہتے ہیں, مذہب میں اونڈے اتر کے مذہب کی حالت کو جاننا چاہتے ہیں, ایسے آپ میں اگر کوئی ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی مسجد میں چلے جاؤ, اس نشری مسجد میں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ وہ 12 امام کا سجدہ کرتے ہیں جو ہم نہیں مانتے, مگر سنیوں کی مسجد میں جانا اور آنکھیں کھول کے رکھنا کہ آپ دیکھو گے کہ کس طرح وہ لوگ جب یہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, کندھے کے ساتھ کندھا ملتا ہے, ایک آواز کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, ایک آواز کے اوپر قیام کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے. 10 آدمی ہوں گے تو ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. ہمارے جماعت خانے کی طرح 2-5 ادھر, 5-7 ادھر, 2-4 ادھر, بیچ میں فٹ بال گراؤنڈ کی طرح کھلی گراؤنڈ ہوتی ہے, ان میں نہیں ہے. ہمارے میں یہ خامی ہے. ہمارے جماعت خانوں کے اندر لوگ تھوڑے لوگ ہوں گے تو 2-4 ادھر ہوں گے, 2-4 ادھر ہوں گے, بیچ میں جگہ خالی ہوگی. وہ جو سگنیفیکینس ہے یونٹی کی, ہماری جماعت خانوں میں نہیں ہے. حالانکہ ہم کو ہمارے پیروں نے کہا گیا کہ مکھی کمڑیا کے سیٹ کے سامنے آ کے بیٹھو, جتنے نزدیک بیٹھ سکتے ہو نزدیک بیٹھو. اور خصوصی طور پر دعا کے اندر جب ہم تھوڑا لیٹ بھی آ گئے ہیں تو کئی لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ دعا پوری نہیں ہو جائے. غلط سسٹم ہے, اندر آ کے جوائن ہو جانا چاہیے. اور کم از کم ہم کو, ہم ایک دوسرے کو پنجہ دے سکے, اتنے نزدیک تو ضرور ہونا چاہیے. رسول اکرم نے عربوں کے اندر ایک یونٹی پیدا کر دی. جو ظاہر میں یونٹی تھی, پہلے باطن میں وہ اس یونٹ کو نہیں سمجھ سکے. نماز پڑھتے تھے, اور رسول کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی, لیکن سسٹم یہ تھا کہ مرد آگے آ کے بیٹھ جاتے تھے, عورتیں ان کے پیچھے بیٹھتی تھیں, لیکن عورتوں اور مردوں کے بیچ میں بچے بیٹھتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں غریب بہت تھے, غلام لوگ زیادہ تھے, ان کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ اچھے کپڑے پہن سکے. اس لیے جو ہی نماز پوری ہوتی تھی پیچھے سے ہی عورتیں جلدی سے بھاگ جاتی تھی. جو خشیت, عزت, رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ لوگ رکھتے تھے, لیکن کپڑے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ جاتی تھی. آہستہ آہستہ 10 برس لگے مسلمانوں کی عرب سوسائٹی کو, 10 برس لگے رسول اکرم کے, 10 برس جو مدینے میں تھے وہ 10 برس لگے کہ وہ ایک طاقتور قوم جماعت بن گئے. ان کی زندگی بدل گئی, उनका रहना सहना बदल गया, आदतें बदल गई, थिंकिंग बदल गई। खुदा ताला के इस नबी ने मुर्दे में जान पैदा कर दी। मरी हुई कौम थी अरबों की, नबी करीम ने उसमें जान पैदा कर दी। एक कौम हो गई, एक यूनिट हो गया। जैसे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने फरमान करते वक्त अपना हाथ दिखाया कि देखो ये हाथ है ना, एक एक उंगली कमजोर है, लेकिन जब ये मुट्ठी बंद हो के पंजा हो जाता है तो ताकत पैदा होती है। ये ताकत अरबों में पैदा होगी। लेकिन ये चीज जो इस्लाम जिस चीज के लिए आया था, ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं आया था, हालांकि इसकी जरूरत थी। क्योंकि ये कंडीशन अगर पैदा न होती तो इस्लाम के अंदर जो सटलिटी थी, इस्लाम के अंदर जो कोर थी, उस तक लोग पहुंच ना सकते थे। जब ही मदीने के नबी करीम के जो 10 बरस थे, बड़े अच्छे 10 बरस थे, इस्लाम का बीज बोया गया और इस्लाम एक बड़ा झाड़ बन गया, दरख्त बन गया, कि सारी दुनिया में उसका शेड पहुंच गया। मगर अब असल हकीकत क्या थी? 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, हालांकि कुरान शरीफ में 5 वक्त की नमाज का कहीं जिक्र नहीं है। अल्लाह ने यह जरूर कहा है कि दोपहर को मेरी तारीफ करो, ग्लोरीफाई करो, और कुरान ने वो लफ्ज ग्लोरीफिकेशन के लिए सुबहान कहा है कि अल्लाह ताला सुबहान ताला है, उसका वखान करो, यानी कि सुबहान अल्लाह की तस्बीह निकालो, कुरान में है। और फिर एक पहर निकल जाए तो उसकी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दु की तस्बीह करो। अब उनको ये तस्बीहों की तरफ नबी ने नहीं डाला, क्योंकि नबी का जो एम था वो एक ताकतवर जमात बनाने का था। अगर वो तस्बीहों की बात आती तो इंडिविजुअलिटी आ जाती, घरों में सुभान अल्लाह की तस्बीह निकालो। मगर खुदा ताला के इस नबी ने इस ग्लोरीफिकेशन को नमाज में बदला दिया। दोपहर हो जाए तो नमाज पढ़ो, 4:30 बजे तो नमाज पढ़ो, मगरिब हो जाए तो नमाज पढ़ो, और रात को सोने से पहले नमाज पढ़ो, सुबह नमाज पढ़ो, 5 नमाजें लगा दी। 5 नमाजों का हुक्म नहीं, मगर ये शरीयत बनाई रसूलुल्लाह ने कौम को मजबूत करने के लिए। और कौम मजबूत हो गई। नबी करीम ने हज किया 8 में, मगर हज के लिए गए वापस चले आए, क्योंकि मक्का वालों ने कहा इस दफा चले जाओ, दूसरी दफा आना। इसमें एक हिकमत थी, ये सियासत थी, ये एक नबी की स्टेट्समैनशिप थी। यहां से आदमी साथ ले गए, 10,000 आदमी साथ थे, हज करने जाते हैं, लेकिन हज नहीं किया, हज किए बगैर चले आए, कई मुसलमानों का ईमान बिगड़ गया। ईमान बिगड़ गया, उमर जैसे खलीफा खुद कहता है कि मुझको अपने ईमान में शक पैदा हुआ, क्या नबी सच्चा है कि नहीं। नबी ने कहा चलो हज करने चले, लेकिन हज किए बगैर चले आए, तो कहने लगा, उमर कहता है कि मुझे नबी की नबूवत में शक पैदा हुआ। ये वो वक्त था कि जब जाहिर में शरीयत कंप्लीट हो गई तो कुछ ऐसे लोग थे, अबू जर गफारी जैसे, अम्मार बिन यासर जैसे, सासा बिन सुहान जैसे, ऐसे आदमी थे कि जो नबी की सोबत में बैठा करते थे, पूछते हैं या नबी आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी, ज़कात देते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, या नबी क्या इससे और भी कुछ ऊपर है मजहब में? फरमाया हाँ है। ये आम लोगों की बात नहीं थी, सिलेक्टेड आदमी थे। या नबी क्या है? फरमाया आधी रात को उठो और अंधेरे में अल्लाह को याद करो, जबान हीले बगैर दिल में उसको याद करो, उसको देखने की कोशिश करो। या नबी अल्लाह आंख से दिखेगा? फरमाया नहीं, अल्लाह नूर है, आंख से नहीं दिखेगा, ये आंख में ताकत नहीं, लेकिन अपने दिल की आंख से उसको देखो। ये बैतुल ख्याल था। और ये सीरियस लोग जो थे वो उठते थे, आधी रात को उठ के वुजू करके बैठ जाते थे, कोई एक घंटा बैठता था, कोई छह घंटे बैठते थे। लेकिन ये सुबह की इबादत रसूल अकरम ने सिलेक्टेड लोगों को सिखाई, और सिलेक्शन ही होता है इसमें। बैतुल ख्याल की इबादत भी सबके लिए नहीं है, सब इबादत कर भी नहीं सकते। मौलाना हज़रत इमाम, देखो जो इमाम है ना, वो हकीकत में जमीन आसमान का बादशाह है, एम्परर है, मैजेस्टी है। जैसा जमाना देखता है ऐसा उसका फरमान होता है। मुझे याद है, खुद मेरे साथ बीता हुआ है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अपने अब्बा मौलाना अली शाह के जमाने से हट गए। अली शाह माँ बाप का जो जमाना था उसके अंदर बहुत मुश्किल से छुपा छुपा के बैतुल ख्याल की इबादत का बोल दिया जाता था। अर्जे कर करके लोग थक जाते थे लेकिन बोल नहीं मिलता था। सिर्फ एक आदमी के ऊपर अली शाह माँ बाप की रहमत बहुत उतरी, और वो थे वजीर इस्माइल गांधी। दिनदारों, ये जो रास्ता है ना बैतुल ख्याल का, बहुत मुश्किल रास्ता है। और वजीर इस्माइल गांधी को अली शाह माँ बाप ने एक दिन कहा, मैं तेरे से खुश हूं और मौला भी तेरे से खुश है, यानी कि मौलाना आसम अली शाह माँ बाप, ये पीरी जोमे की बात है, मैं चाहता हूं कि तुझे मैं इबादत सिखाऊं। कहते नहीं अली, मेरे से नहीं होगा। और वो जमाना था कि 6 घंटे की इबादत थी, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। खुद काला रूड़ा जो थे ना, वो 6 घंटे की इबादत करते थे। सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में भी, काला रूड़ा 1932 में गुजर गए। वजीर इस्माइल चले गए, 1-2 महीने हुए तो अली शाह माँ बाप ने फिर कहा, इस्माइल जी खुदा तैयार हो? नहीं मौला, मुझे नहीं चाहिए। मना करता था। यूं करते करते 3 साल गुजर गए, और मौलाना अली शाह माँ बाप का जो प्रेशर था बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि अली शाह माँ बाप ने इसको बुलाया। मौलाना अली शाह माँ बाप दरवाजे पे खड़े थे जब ये आया। अब इस्माइल अंदर आ, नमन किया, अंदर आया। मौलाना अली शाह ने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, ताला लगा के चाबी दिखाते हैं, देख ये चाबी मैं रखता हूं, किसे कहां से भागोगे? आज मैं तुझे बोल देने वाला हूं। और रो पड़ा, पांव पे गिरा। अच्छा खुदा, मैं तेरा गुलाम, यहां इसको इबादत मिली, बोल दिया गया। और उसके बाद तो फिर वो पीर बन गया, जो कि गुजर गया, गुजर जाने के बाद फिर पीर बन गया। लेकिन जब उसको इबादत मिली और उसकी मौत हुई, इसके दरमियान में बहुत बड़ा फर्क नहीं था, 2-2.5 साल ही इबादत की और गुजर गए। अली शाह माँ बाप ने पीरी जो दर्जा दिया, बख्शीश नहीं, लेकिन साथ साथ ये कहा कि 10,000 आदमियों को तार गया है। ये वो जमाना था कि इबादत जो थी ना वो हीरे की तरह नायाब थी, मिलती नहीं थी, और जिसको मिलती थी वो मना करते थे। सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार के जमाने के अंदर जमाना बदल गया, हालात बदल गए, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसको आम कर दिया। 21 बरस की उम्र थी शुरुआत में, फिर 18 साल हुए, 16 साल आ गए। 16 बरस की उम्र में आओ और बोल ले जाओ, बंदगी करो। और सुल्तान मोहम्मद शाह एनकरेज करते थे कि तुम इबादत करो। 16 बरस की उम्र में बोल मिल जाता था, जिनको वो 70 बरस की उम्र वाले को बोल नहीं मिलता था। लेकिन जमाना अब ऐसा है कि सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार के जमाने की ये बात को आज हाजिर इमाम ने ऊंधा कर दिया, इबादत करना को फर्ज नहीं है। हाजिर इमाम डिस्करेज करते हैं। क्यों डिस्करेज करते हैं? सुनो, क्यों डिस्करेज करते हैं उसके लिए मैं आपको हिकायत सुनाता हूं। 63 में, 63 में मौला किनशासा गए। किनशासा के इस प्रोग्राम के अंदर इकट्ठे हुए बोल बदलाने वाले, हजरत इमाम आके बैठे, फ्रेंच में फरमान करते थे, सबको देखा, लगभग 64-65 भाई भाई बैठे थे। मौला कहते हैं, तुम्हारे में से जो बोल को भूल गया है वो हाथ ऊंचा करो। किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। हाजिर इमाम सबको देख के मुस्कुराए, फिर कहते हैं, तुम्हारे में से कोई बोल भूल गया है तो हाथ ऊंचा करो। तो एक दो ने हाथ ऊंचा किया, सब फिर जोर से मुस्कुराए, स्माइल किया, फिर कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे में से किसको बोल याद है किसको नहीं याद, मैं इंडिकेट करूं, इससे तो बेहतर यह है कि तुम खुद हाथ ऊंचा करो, जिसको बोल भूल गया है वो हाथ ऊंचा करे, मैं प्रॉमिस करता हूं। सब कहते हैं, गुस्सा नहीं करूंगा। मानो क्या हुआ, 2 आदमी के सिवा सब ने हाथ ऊंचा किया। हजर इमाम का जो मुंह था ना, ढीला पड़ गया, उसको दुनिया भाने रंज हुआ। हजर इमाम दुनिया भाने ये देख के कि ये मेरे मुरीद, ये मेरे रूहानी बच्चे ऐसे हैं। फिर हजर इमाम आस्था से कहते हैं, तुम अपने दुनिया का जो बाप है उसका नाम भूल जाते हो। अबू अली का बाप अली भाई है तो अबू अली को छोटी उम्र से सारी जिंदगी अपने बाप का नाम याद है। तो हजर इमाम कहते हैं, तुम अपने दुनिया के बाप, जो तुम्हारा बाप है, उसका नाम भूल जाते हो। कहा नहीं खुदा, तो रूहानी बाप का नाम भूल गए, यानी बोल भूल गए। मेजॉरिटी लोग रो रहे थे, हजर इमाम ने फिर फरमाया, मैं तुम्हें माफ करता हूं, हम लोग बोल भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? इसलिए कि इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर लेते काहे को, बोल काहे को लेना। کوئی لازم نہیں. حضرت امام کہتا ہے کہ یہ بیت الخیال کی عبادت کوئی لازم نہیں. سلطان محمد شاہ نے لازم کی کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا. 16 برس کے بچوں کو انکریج کرتے تھے کہ آؤ اور بول لے جاؤ, اور دینداروں وہ لوگ عبادت کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. مگر ہم یہاں آج کے زمانے کے اندر, صرف کینیڈا امریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں, ساری دنیا کے اندر اس وقت جو ہماری خوجہ قوم ہے, جن کو یہ بول کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ نے رحمتیں کی ہوئی ہیں, یہ ہمارے یہ عرب دوست جو ہمارے بھائی ہیں یا ایرانی ہیں یا بدخشانی ہیں, ان کو بول نہیں ملتا. صرف چمپو دیپ کے جو جیو ہیں ان کے لیے یہ رکھا گیا. ہم لوگ بول بھول جاتے ہیں. بندگی کیا کہوں, بندگی لے کے پھر بھول جاتے ہیں. حضرت امام کے ساتھ ہم نے چیٹنگ کی نا, اس کو کہا کہ ہم اٹھیں گے. اے مومنوں, کبھی کبھی حضرت امام جب بھی بول دینے آتا ہے تو کہتا ہے, فرض نہیں ہے میرے فرمان سننے کے بعد اگر تم کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا تو تم اٹھ کے جا سکتے ہو. حضرت امام کہتے ہیں تم جا سکتے ہو, باہر جا سکتے ہو, فرض نہیں. مگر یاد رکھو دینداروں, کچھ برسوں کے بعد میں ڈرتا ہوں کہنے سے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایسا اپنے منہ سے کوئی ایسی چیز نہ بول دوں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ڈرتے ڈرتے کہ کچھ برسوں کے بعد شاید یہ بول دینا بھی بند ہو جائے, کیونکہ ہم نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے. میں ابھی آیا ہوں یونین ویل جماعت خانے سے, صبح ادھر جاتا ہوں, ستارہ ہے, ستارے کی تسبیح نکلتی ہے, جماعت خانہ خالی ہے, تھوڑی عورتیں ہیں زیادہ, لوگ نہیں آتے, ستارے میں بھی نہیں آتے. اور ستارے کی جو مہیما ہے وہ تسبیح ہے, تسبیح میں ہی اگر نہیں پہنچتے تو تم ستارے کے اندر تو بھاگ نہیں لیتے. ستارے کی مہیما تسبیح ہے, اور وہ بی بی فاطمہ کی خصوصی تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ بول ہے, اس میں عظمت ہے. اللہ اس کا ذاتی پرسنل نام ہے, جیسے کہ حضرت امام دھنی سلامت ہے, امام ہے, ہزائنس ہے, صاحب الزمان ہے, لیکن اس کا پرسنل نام کیا ہے؟ کریم. ایسا اللہ اس کا پرسنل نام ہے, اور اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, رب العالمین, یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, اور ان میں یہ اس کا پرسنل نام ہے. اس ستارے کی اس تسبیح میں جو ہم 3 نام لیتے ہیں خدا کے, اللہ اکبر, یہ اس کا پرسنل نام ہے. تو بڑا ہے. سبحان اللہ یعنی جس میں کوئی خرابی نہیں, کوئی عیب نہیں, وہ سبحان ہے. الحمدللہ وہی ایک ہے کہ جو ہر وخان کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. یہ اس میں اعظم کے درجے کی چیزیں ہیں کہ جو ہم ستارے میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں. ہم اس تسبیح میں ہی نہیں آتے تو ستارہ کیا کریں گے؟ یہ رستہ جو ہے, حضرت امام فرمایا اٹس اے ہارڈ ڈسپلن, بیت الخیال کی عبادت ہے, یہ ہارڈ ڈسپلن ہے. دن کو کام کرنا ہے, بچے پالنے ہیں, فیملی دیکھنی ہے, ان تمام چیزوں میں سے اپنے دل کو کھینچ کے صبح اٹھ کے عبادت کرنا ایزی نہیں ہے. اس لیے इसलिए मैंने आपको कहता हूं कि मैं डरता हूं ये कहने में, लेकिन आपको मैंने कह दिया है कि ऐसा ना हो कि कुछ वर्षों के बाद इमाम कह दे अच्छा आज से बैतुल ख्याल का बोल बंद, मौला ऐसा ना करे, हम लोग सीरियस नहीं है, हम अपने मजहब को जानते ही नहीं और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। मैं 3 दिन से मैं वाजे कर रहा हूं, इस पर मैं हैमरिंग कर रहा हूं कि अपने मजहब को जानो, अगर मजहब लिया है तो उसको जानो, और मजहब को जानने के लिए घंटा डेढ़ घंटा कुछ पढ़ा करो लिखा करो, आराम से बैठ के सोचा करो। हमको अपने मजहब की खबर होनी चाहिए, ये नूर का मजहब है, ये नबियों का मजहब है, ये रसूलों का मजहब है जो हमारे हाथ में आ गया है, पीरों की तुफैल आ गया है, उसने रहमत करके हमको दिया, हम इसके लायक नहीं है, इस्माइली मजहब के लायक हम नहीं हैं, हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, हमारी ड्रेस अच्छा नहीं है, हमारा ख्याल अच्छे नहीं है, हमारी आदतें अच्छी नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि या मौला क्या हुआ तुझे कि तुमने ये बख्शीश हमको दी। एक इस्माइली दूसरे का दुश्मन है, फरेब करते हैं, दगा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमें आकबत का कोई ख्याल नहीं, और फिर हम बैतुल ख्याल का बोल ले आते हैं। मस्खरी है ना, ये जोक बना रखा है हमने, महापद के लिए बात कोई की जाने, ये महापद है जिसको कुरान शरीफ की भाषा में अरबी जबान के अंदर कुरान ने इसको मुकाम महमूद कहा है, रसूलुल्लाह के लिए ये लफ्ज निकाला गया मुकाम महमूद, महापद, कि इससे ऊंचा और कोई मकाम नहीं, यानी ये इशारा है मेराज की तरफ, ये बैतुल ख्याल का जो रास्ता है ये तो साधुओं ऋषियों मुनियों का पैगंबरों का रास्ता है जो हमको मिल गया। शेख सादी ने, शेख सादी बहुत अच्छा पोइट था, उसके कलाम में बड़ी हिकमत है, आदमी को अच्छी आदतें जिसको अरबी में अखलाक कहते हैं, मैनर्स एंड मॉरलिटी, शेख सादी की किताबों में बहुत है, कहते हैं बड़ी अच्छी मजे की चीज है, कहते हैं कि एक गधा बूढ़ा हो गया, एक डोंकी बूढ़ा हो गया, जहां जावे जवान गधे लाते मार के उसको निकाल देवे, खाने ना देवे, दुबला होता गया, नागहा एक दिन यकायक उसने देखा कि एक शेर की खाल मरी पड़ी है, यानी शेर मर गया और अंदर का गोश्त हाइनास खा गए, अब ऊपर उसका वो जो स्किन थी ना हाइड वो खाली रह गई, तो इसको आइडिया आया, ऐसा जमीन पे सो के तो खिसकते इसने वो मरे हुए शेर की जो खाल थी, चमड़ा जो था अपने ऊपर ओढ़ लिया। जब ओढ़ लिया तो बड़ा खुश हुआ, निकला बाहर तो दूर से वो गधे जो उसको लाते मार के निकाल देते थे सब भाग गए, वो समझे शेर आया है और ये मजे से खाता पीता रहा, मोटा हो गया। शेख सादी कहता है दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे गधे हैं कि जो शेर की खान पहन के निकले हैं, शेर नहीं गधे हैं। पैगंबरों का रास्ता, हमने टोपी पहन ली लेकिन हम पैगंबर नहीं बन सकते, हालांकि बैतुल ख्याल जो हमें मिला है ये पैगंबर बनाने का रास्ता है। इस्माइल गांगी जी पीर बन गए, पीर पैगंबर ही है ना, सबसे अली पीर बन गए। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वजीर रेमू जैसे, गोवादरी जैसे, कि जिनको इमाम ने कहा कि वो अहले बैत का मेंबर है। अहले बैत, अहले बैत रसूल, जिसके ऊपर हम सलवात पढ़ते हैं, ये जो आले रसूल है ये अहले बैत हैं। मौलाना हजर इमाम के भाई हैं, बच्चे हैं, ये अहले बैत हैं, ये मासूम हैं। इस दर्जे को हमको बख्शीश मिली। मैंने अभी आपको कहा कि क्या किया हमने कि हमारे पीरों ने हमको तख्त दे दिया बैठने के लिए, थ्रोन दे दिया। जमीन पे बैठने वाले, कीचड़ में बैठने वालों को बादशाही का थ्रोन दे दिया। क्यों, क्या देखा पीरों ने हमारे अंदर? मैं बताऊं आपको ये भेद की बात। चारे चारे जुगना जीवड़ा तमारा, चारे चारे जुगना जीवड़ा तमारा, के स्थान वसंता है जी। ये कलयुग है, 4,32,000 बरस लंबा है। कलयुग का पीरियड 4,32,000, 432,000 ईयर्स का लंबा है इसका पीरियड। लेकिन सिर्फ 7,200 बरस इसके निकले हैं, 4.25 लाख बरस बाकी हैं। और इसके पहले जो द्वापर युग था वो 8,64,000 बरस लंबा था। उसके पहले त्रेता युग था, 12,96,000 बरस, 1.29 मिलियन बरस लंबा था। और सतयुग जो था तो 1.7 to 8 मिलियन ईयर्स लंबा था, 17,28,000 बरस लंबा था उस वक्त से, यानी कि 40 लाख बरस से, 4 मिलियन ईयर्स से इस दुनिया में लाइफ पैदा हुई। और एवोल्यूशन की मारिफत आस्ते 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 जीव बढ़ते गए, बढ़ते गए, इंसान बन गए। उस जमाने से लेके जो जीव हैं वो दुखों तकलीफों में से निकले हैं। यानी हम लोग गए 40 लाख बरस मार खाते खाते, मरते जन्मते चले आए। हमारे जीव ने 40 लाख बरस मार खाई है। 40 लाख बरस हम लोग जानवरों में रहे और जानवरों से निकल के आज इंसान बने हैं। जो 4 युग हमने मार खाई, पीरों को तरस आया कि ये हरदूत हुए हैं, जलील हुए हैं, ख्वार हुए हैं, 40 लाख बरस से मार खा रहे हैं, जमीन के ऊपर रगड़े गए हैं, अब इनके ऊपर रहम करो, दया करो। और अपने इस्लाम शाह माँ बाप को पकड़ के गुर पीर हसन कबीर दीन ने अपनी 40 लाख बरस की बंदगी जमात को दे के कहा, या मौला अब इनके ऊपर तू रहम कर। उस रहम की वजह से हमको ये रास्ता मिला, उस रहम की वजह से हमको इस्माइली मजहब सतपंथ मिला। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ततार फरमाया कि हर रोज 40 दाने पीर शाह के निकाला करो, कि तुम नसीबदार हो कि तुम्हें इस सतपंथ के अंदर जन्म मिला, उसकी शुक्रगुजारी में 40 दाने पीर शाह के रोज निकाला करो जमात के लिए कि तुमको यह मजहब मिला। इस मजहब को मिला, मेहरबानी से मिला, दया करके मिला, हमारे ऊपर तरस खा के मिला, पिटी करके हमको ये मिला। और हम हमारी वही पुरानी आदत रही ना, मिला है लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हम लोग सब इस वक्त बैठे हुए हैं अपने अपने दिल में, मुझे मालूम है कि मैं कितना सच्चा हूं कितना खोटा हूं, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या खामी है क्या नहीं है। हर इंसान को अपनी आदतों का पता है, इसीलिए इमाम सुल्तान शाह फरमाया कि आराम से बैठ के आधा घंटा पा घंटा सोचा करो कि भला मैं अच्छा इस्माइली हूं, क्या मैं फरमान बरदार हूं, क्या मेरी दसवन बराबर है, क्या मैं दुआ बराबर पढ़ता हूं, मैं रोज जमात खाने जाता हूं, हमारे ऊपर जो फर्ज किए गए उन फर्जों को याद करके खुद ही टिक लगाओ कि मैं कहां हूं, तो क्या होगा, हमको शर्म आएगी कि मैं ठीक नहीं, मेरी हालत अच्छी नहीं। अपनी हालत को सुधारने के लिए हमें अवेकनिंग चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। और हम दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, कार रोजगार में फंसे हैं, कमाने में फंसे हैं, और फिर पैसे मिले हैं तो मौज शौक में लगे हुए हैं। सीरियसली हमने अपने मजहब को जाना नहीं है। इसलिए दीनदारों हम बहुत से दुखों में पड़े हुए हैं। मैं कहा करता हूं कि ये इस्माइली मजहब जो है ना, ये रसूलों का नबियों का दीन है। इस दीन के अंदर हमें दुख मिले हो नहीं सकता। इस दीन के अंदर हमें ये हालत मिलती है कि अगर हम दीन कमाते हैं तो दीनदारों आपको रगड़ रगड़ के दुआएं मांगने की जरूरत नहीं, इच्छा करो वो होना चाहिए। कौन सी चीज चाहिए आपको? दुनिया चाहिए तो इधर मिलेगी, दीन चाहिए तो यहां मिलेगा, तंदुरुस्ती चाहिए, माल चाहिए, औलाद चाहिए, क्या चाहिए आपको? उसके लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं। हम हजर इमाम के रूहानी बच्चे हैं तो ये फरिश्ते तो हमारे नौकर हैं, ये फरिश्ते हमारे नौकर हैं। और अगर हम आगे कुछ कहें तो फरिश्ते सर झुकाते हैं। मोमन तो इच्छा करता है और वो हो जाती है। हमें दुख मिले, सारी दुनिया से मुझे फोन आते रहते हैं, अपने दुख रोते हैं लोग। मैं रियली ताज्जुब करता हूं कि हमारी जमात के अंदर मेजॉरिटी लोग दुखी हैं। दुख है नहीं लेकिन दुख का रोना रोते हैं। हमारी जमात के अंदर दिन ब दिन डिप्रेशन बढ़ती जाती है। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन है कि जो इंसान को आधा पागल बनाती है, और डिप्रेशन उसको होती है कि जो ये समझ लेता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेला हूं। ये अकेलापन डिप्रेशन की बुनियाद है। अगर उसका ईमान सलामत है, वो जानता है कि मेरा मालिक मेरा रूहानी माता पिता बैठा है, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगी, और डिप्रेशन का कारण भी नहीं। उसी को डिप्रेशन होती है कि जिसका ईमान खराब है, हाय मेरा क्या होगा, मुझे डर लगता है, भीख लगती है। इसलिए कि हमने अपने मजहब को जाना नहीं। और इसमें खास तौर पे बैतुल ख्याल का बोल लेके इबादत कबूल करके मौला के पास जाके फिर हम सो जाते हैं और बंदगी नहीं करते तो हमारे ऊपर लानत पहुंचती है, आसमान से हमारे ऊपर लानत उतरती है। हमारे काम अच्छे नहीं पड़ते, हमें तंदुरुस्ती नहीं मिलती, हमें दुनिया के अंदर जो नहीं होने वाली दुख है ना वो भी हमको नजर आते हैं। और दुख छोटा होता रहा लेकिन हमको बड़ा दिखता है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर रूहानियत नहीं है, रूहानियत मिट गई। ये ऋषि मुनों का रास्ता, ये पैगंबरों का रास्ता, ये फरिश्तों का रास्ता, ये नूर का रास्ता जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं, हमने धूल मिट्टी में फेंक दिया है। कितने हैं आज हम इधर बैठे हुए हैं, कौन है, कितने हैं कि जो हर रोज इबादत करते हैं? ठीक है, इंसान कभी वीक हो जाता है, 10-20 मिनट लेट हुए कोई बात नहीं है, लेकिन हर रोज इबादत होनी चाहिए, क्यों ना हो? नहीं होती तो क्यों ली? मौलाना हसन इमाम गुस्से हो जाते हैं कभी कभी, जैसे मैंने आपको बात सुनाई कि निशास्ता के सफर में कि तुम अपने दुनियावी बाप का नाम कभी नहीं भूलते तो रूहानी बाप का नाम भूल गए, क्योंकि हमें कदर नहीं। सुबह की इबादत बहुत जरूरी है, नियत अच्छी होनी चाहिए। इंसान कमजोर है, ठीक है किसी दिन लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इबादत होनी चाहिए, और इस इबादत से फायदा उठाओ। बैतुल ख्याल की इबादत करने के बाद कुछ मत मांगो सिवाय ये कि तू राजी रहे, तू राजी रहे, बस कुछ नहीं चाहिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह गाड़ी से उतरे, पुणे की बात करता हूं, गाड़ी जब आई तो जमात खाना इस तरफ था, मुखी कमरिया प्रेसिडेंट यहां खड़े हैं, इधर बैठे हैं। जब गाड़ी यहां आई, खड़ी हुई, मुखी ने दरवाजा खोला, लेकिन इमाम घस के खिसक के खिसकते वो साइड से उतरे कि जहां उस तरफ कोई था नहीं, तो ये सब लोग दौड़े उस तरफ, उधर से मौला उतर के सीधा वहां लगभग 100 फीट पे एक लिमड़े का दरख्त का झाड़ था, उसके नीचे एक ईरानी इस्माइली, सारे बदन पे उसको लेप्रसी थी, लेप्रसी कंटेजियस डिजीज है, और अगर लेप्रसी ऐसी बिगड़ जावे तो बदन में से पानी निकलता है, वो पानी का टीपा जहां भी लगे लेप्रसी हो जाती है। झाड़ के नीचे खड़ा था, और लेप्रसी में दूसरी बात यह होती है कि बदन दुखता है, सारा बदन दुखता है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उधर से उतरे, सीधा उधर गए, उसने देखा कि मौला आता है, खुशी से नाचने लगा, उसकी खुशी समाई नहीं जाती थी। थोड़ी दूर खड़ा होके मौला उसको फारसी में कहते हैं, तू कैसा है? कहते हैं, खुदावंद बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ खुदावंद बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई दुख है? खुदावंद कोई नहीं, दुखता है खुदावंद कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं की, मैं मर रहा हूं, मुझे दुखता है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ऐसा है, मुझे तैसा है, एक लफ्ज नहीं कहा उसने, एक कंप्लेंट का, शिकायत का एक लफ्ज नहीं कहा, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। यह रूहानियत है। हम अपने मजहब को क्या जानते हैं, सजदा भी नहीं करते अच्छी तरह से, दुआ पढ़ते नहीं है, और इस मजहब के अंदर जो नूर छुपा हुआ है हम उस नूर तक कभी देखा भी नहीं, हम पहुंचे भी नहीं। थोड़ा सा दुख मिलता है, वाला मचाते हैं, हाँ मैं दुखी हो गया, हाँ मैं दुखी हो गया, मिशनरी बाबा मैं क्या करूं, मुझे मैंने क्या ऐसे गुनाह किए कि मौला मुझे, अरे तुमने मौला के ऊपर डाल दिया, मौला को कसूरवार बनाया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मौला मुझे इतना दुख देता है। ये हम इस्माइली हैं, मौला को कसूरवार कर दिया कि मौला ने मुझे दुखी दिया है, खुद ने क्या किया है वो भूल गए। ए मोमिनो जागो, अपनी रूहानियत को उठाओ। ये वो रास्ता है, जैसे फिर मैं बार बार रिपीट करता हूं, कि ऋषियों मुनियों का रास्ता है, ये पैगंबरों का रास्ता है, ये रसूलों का रास्ता है, जो हमको पीरों ने रहम करके हमको ये इनायत किया है। बहादुर बनो, ताकत वाले बनो, इबादत करो, बराबर दस्तम दो, इस मालिक से मोहब्बत करो। जब मैं कहता हूं कि मोहब्बत करो, तो मैं यह साथ कहा करता हूं कि मोहब्बत जो है ना, वो ऐसा रास्ता है कि वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ जाता है, आता नहीं। मोहब्बत में लोग मांगते नहीं, इससे मोहब्बत करो और मांगो मत। दुख है उसके लिए तस्बीह निकालो, लेकिन मौला को ये मांगते मांगते हम मांगते ही रहेंगे। हमने अपने रूह के लिए कुछ मांगा कभी कि या मौला तू मुझे नूर की बख्शीश दे, या मौला तू मुझ पे राजी हो, एक दिन मरना है, कोई बचने वाला नहीं, तंदुरुस्त भी मरेगा, बीमार भी मरेगा, और बीमारियां जो है ना वो हमारे गुनाहों के नतीजे हैं। हमें पैसे की तंगी है, हमारे गुनाहों की कारण से हमारा रोजी रिजक घट गया है, हमारे गुनाहों के कारण से। औलाद का दुख है, गुनाहों के कारण से। बीवी शोहर का दुख है, गुनाहों के कारण से। कोई ऐसा दुख नहीं कि जो गुनाह के बगैर दिया गया है। खुदा जालिम टायरेंट नहीं है, ईदी अमीन की तरह या ये दूसरे जो बदमाश निकले डिक्टेटर जो जुल्म करने वाले हैं, खुदा ऐसा नहीं है। वो करीम है, रहीम है, रऊफ है, तरस खाने वाला है। बार बार उसने ये कहा है कि मैंने अपनी रहमत को अपने आप इम्पोज कर लिया है, लाजिम कर दिया है कि मैं हर हालत में रहम करूंगा, और वो करता है। लेकिन जब हम हद से बढ़ जाते हैं, तो वो हमारी खातिर मौला अपना जो कायदा है, अपना उसको जो लॉ है, वो नहीं तोड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, आमाल का, मौला तोड़ेगा नहीं। ये करेगा कि अपनी रहमत शामिल करके दुख को घटा देगा, लेकिन दुख मिटेगा नहीं, और दुख हमारे अपने हाथ से किया होता है। और हम जब दुख का रोना रोते हैं, उसको भी दुख होता है। बच्चे के रोने से माँ खुश नहीं होती, वो माँ से भी ज्यादा रहीम है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि सारी दुनिया के माता पिता को उनका जो प्यार है, एक जगह इकट्ठा करो तो मेरा प्यार उनसे भी ज्यादा है। और वल्लाह हाजिर इमाम हमको बहुत प्यार करते हैं, उसके प्यार की वजह से हम खाते पीते उठते बैठते हैं, उसकी रहमतें बेहिसाब हैं। हम भिखारियों की तरह हैं कि जिसने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन सेठ उसको भीख देता है। यानी हमने कोई अच्छे अमाल नहीं किए, हमने कोई ऐसी चीज नहीं की कि खुदा हमको मालदार बना देवे, तंदुरुस्त बना देवे, हमको इज्जत आबरू दे देवे, लेकिन फिर भी देता है। बैतुल ख्याल बहुत जरूरी चीज है, सीरियस चीज है। और इससे क्या होता है कि हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारी आदतों में, हमारे एक्शन में आस्ते आस्ते सफाई आती है, क्लीन होते हैं हम लोग, गुनाह घट जाते हैं। इबादत करने से गुनाह घट जाते हैं, क्योंकि इबादत करने से हमको ऐसी अवेयरनेस आती है कि गुनाह करने से बचते हैं। हमको पता लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं, और जब ये बनता है, दिन ब दिन हम क्लीन होते जाते हैं। और जब मौत आती है, तो फिर हमको वो लेने आता है, खुद लेने आता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब मेरे मोमन दुनिया से गुजरते हैं, तो खूबसूरत एट्रैक्टिव फरिश्ते उसको लेने जाते हैं, लेकिन जब भी कोई काफर गुजर जाता है, तो अल्लाह कहता है भयानक डरावने ड्रेडफुल फरिश्ते उनको लेने जाते हैं। और ये जब भी काफर गुजरता है और डरावने फरिश्ते उसको, जो रूह कब्ज करने वाले हैं, वो डरावने होते हैं, भयानक होते हैं, तो इंसान का पखाना निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है डर के मारे। मौत के वक्त इंसान जो आला दर्जे के लोग हैं उनकी रूह आंखों से या नाक से या मुंह से निकलती है, लेकिन उससे नीचे के जो लोग गुनहगार होते हैं उनकी कानों से निकलती, कान में खून आ जाता है मौत के वक्त, या पेशाब पखाने की जगह से रूह निकलती है तो इंसान का पखाना निकल जाता है। ये जिल्लतें ये रुसवाइयां उस वक्त उसको याद आती है और वो पछताता है कि या मौला मैंने कैसे गुनाह किए, लेकिन सारी जिंदगी वो सुनता भी रहा, वाजे सुनता रहा, फरमान सुनता रहा, गिनान सुनता रहा, लेकिन अपने आप को उसने सुधारा नहीं तो मार खाए, मार खाए। मौला सुल्तान शाह फरमाते हैं, नबी की हदीस है ये कि कब्र के अंदर आतिश का गुरुस मारा जाएगा, कुरान पढ़ो तो बदन लरसेगा डर के मारे, ऐसे खुदा ताला ने हमको इशारे किए हुए हैं। इन काफरों को गुनहगारों को खुदा ताला बॉयल किया हुआ पस पिलाया जाएगा, पस बॉयल पस पिलाई जाएगी, गरम गरम बॉयलिंग वाटर उनके मुंह में जबरदस्ती डाला जाएगा। ये इशारे खुदा ताला के कुरान शरीफ में बिल्कुल किए हुए हैं। हमारे गिनानों के अंदर भी कुरान शरीफ की इन चीजों को जिक्र किया गया है कि हमको ये सजाएं मिलेंगी और मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। मजहब हमको ये सब इसलिए बचाने आता है कि हमको कहता है ये काम नहीं करना, पकड़े जाओगे। तो ए दीनदारों, ये जो महापद है बैतुल ख्याल, सबसे ऊंचा लेवल जो है, पीर कहते हैं कोई के जाने जेने सतगुर मिलिया सार सोई पिछाने, सतगुर मिलिया लेकिन सतगुर ने जो कहा हम माने, तो सतगुर ने तो कहा हमको कि मैं तुमको ये बैतुल ख्याल ये देता हूं, ये नूर की चाबी है, बैतुल ख्याल अमल करो दीनदारो, उठो दुनिया के दुख सहन करके भी सुबह की इबादत करो, जहां तक बन सके जमात खाने आओ, इसलिए कि जमात खाने में जो रूहानियां हैं, जमात खाने में जो फरिश्ते हैं वो हमको इधर आके मदद करते हैं, हमको सलाम करते हैं, हमारी मदद करते हैं। इन फरिश्तों से दोस्ती करो, ये 33 करोड़ देव लोग जो है इनसे दोस्ती करो, और फिर कहते हैं कि तेने देव लोग प्रणाम करें, ये फरिश्ते उस मोमन को सलाम करते हैं, प्रणाम करें। सुबह की इबादत बहुत जरूरी है, ये हमारे मजहब का एसेंस है, और अगर इस पे हम रहे तो इंशाल्लाह दुनिया और दीन की दौलतें आपके पांव के पास हैं। सुखी और आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरियों करे, बदियों बुराइयों से बचावे, गुनाहों से बचावे, नाफरमानी से बचावे, मौला हिम्मत देवे, ताकत देवे, ख्यालात की पाकीजगी देवे, अमल की पाकीजगी देवे। मौलाना हजर इमाम आप पर, आपकी आल औलाद के ऊपर, दुनिया भर की जमात के ऊपर रहमतें करें, नवाजशें करें, शफकतें देवे, नेमतें देवे, दीन और दुनिया में सुखी आबाद रखे। है जिंदा तुझ बिना कोई अवर ना दीस, स्वामी हमने छेता मारो आधार जी तुझे।